ईश्वर की हम सब पर बड़ी भारी दया है। हम लोगों के हृदय में कभी ईश्वर के स्वरूप की स्मृति होती है, कभी नाम की स्मृति होती है। इन दोनों को ईश्वर की दया का स्वरूप समझना चाहिए। ये विशेष दया है। अचानक नाम का स्मरण हो, काम में लगे हुए हो, एवं राम 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 राम, अथवा अकस्मात भगवान की स्मृति हो, देखना हो भगवान ने हमारे मुख से नाम का उच्चारण करवा दिया, भगवान की याद भगवान ने दया करके दे दी। इन दो बातों में भगवान की विशेष दया समझो। यूं तो भगवान की पद पद पर दया है, परंतु स्मृति और नाम की स्मृति आती है तो विशेष दया है। अब कोई कहे कि मन में कभी बुरी भावना पैदा हो तो ये अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए। अच्छी भावना हो उसे ईश्वर की दया समझनी चाहिए। इस विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि अच्छी बात तो भगवान की दया से, तो बुरी बात भी भगवान की दया से ही होगी कि नहीं। तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि भगवान में बुराई होती नहीं। बुराई तो हमारे स्वभाव से पैदा होती है। अच्छे काम में यदि भगवान की दया समझे और बुरे काम में अपने स्वभाव का दोष समझे तो मनुष्य को बहुत लाभ है। वह बुरे काम से बच सकता है और अच्छे काम में लग सकता है। राजा साहब ने बताया, कल शाम का जो वातावरण था उससे बहुत शांति प्रतीत होती है। स्वामी जी महाराज की बात भी चली थी। महाराजा साहब ने कहा कि शांति प्रसन्नता का व्याख्यान समय समय पर हो तो बहुत लाभ की चीज है। शांति प्रसन्नता तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। जानने से अधिक लाभ होता है, अन्यथा परमात्मा तो सबके हृदय में है ही। हाँ, बतलाने से अधिक लाभ हो जाता है। ये ज्ञान, समता, शांति, आनंद, ये सब ईश्वर के भाव हैं। सब जगह रहते हैं, सब समय में रहते हैं, परंतु हमारी दृष्टि नहीं जाती, इसलिए लाभ नहीं होता। ध्यान से सुनना, अपने मन में बार बार ये भावना रखो कि आहा कैसी प्रसन्नता है, कैसी शांति है, कैसा आनंद है। बाढ़ आ रही है आनंद की और शांति की, बाढ़ आ रही है, ऐसे आप भावना करो। ऐसी भावना करने से आपको ऐसा अनुभव हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में ये भावना करो कि संसार नहीं है, केवल मिथ्या प्रतीत हो रहा है। सगुण भगवान के विषय में ये भावना करो कि भगवान की छत्र छाया में हम लोग बैठे हुए हैं और भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम क्यों चिंता करते हो। भगवान ने अर्जुन को कितना अच्छा आश्वासन दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को, कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्याग कर सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। इसमें भगवान का कितना प्यार है, तू शोक मत कर। जैसे किसी बच्चे के अंगुली में पीड़ा हो गई, आप लोगों की बात बता रहे हैं, किसी बच्चे के अंगुली में पीड़ा हो गई, बच्चा रोता है तो माँ को तकलीफ होती है, तो बच्चे की पीड़ा से नहीं होती इतनी तकलीफ, जितनी तकलीफ वो बच्चा रोता है उससे होती है। यदि वो बच्चा कहे कि नहीं माँ कोई खास बात नहीं है, पीड़ा तो खूब है, मन में ही वो बच्चा प्रकट ना करे कि नहीं मैया कोई नहीं माँ कुछ नहीं कोई खास नहीं, तो माँ को इतनी तकलीफ, वो रोता है तब तकलीफ होती है। ऐसे ही ये जीव, हम लोग शोक करते हैं तब भगवान को कष्ट होता है। वो कहते तू शोक मत कर, मेरी शरण में आ जा, शोक मत कर, मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाएगी, सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। कितना आश्वासन देते हैं भगवान। अब एक तरफ तो हमारे मन में ये भाव आता है कि अरे हमने जीवन में बड़े पाप किए हैं, ऐसे ऐसे पाप किए हैं तब हमारा उद्धार कैसे होगा। दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपने पाप का भरोसा मत करो, भगवान की कृपा का भरोसा करो, भगवान की कृपा से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की हमारे ऊपर छत्र छाया है। भगवान ने कहा है मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा। अब बताओ इससे ज्यादा भगवान हमको क्या कहें। आप हरदम ये समझो कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं और हमारे पर प्रेम आनंद शांति और समता की वर्षा कर रहे हैं, और भगवान के पास जो गुण है वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे आनंद मनाओ, आपके अंदर रोमांच होगा, उस रोमांच का ही नाम है कि रोम रोम से भगवान का स्मरण करना। नहीं तो लोग कहते हैं, पूछते हैं कि राम 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 राम, ये तो राम राम तो यहां से होता, रोम रोम से कैसे होता है। तो भगवान की कृपा हमारे पर बरस रही है, इस आनंद में जो रोमांच होता है वो ही रोम रोम से भगवान के नाम का उच्चारण है। जैसे हनुमान जी के रोम रोम में राम जी रम रहे थे, इस प्रकार धारण करें। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, सबसे इस प्रकार भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, कितने ऊंचे दर्जे का भजन है। हमारा इधर लक्ष्य नहीं जाता है, केवल वाणी से भगवान का नाम लेते हैं, इतना ही भजन मानते हैं। भगवान की अपार कृपा है, अपार समता है, अपार आनंद की वर्षा हो रही है, ऐसा भावना है, ये बहुत बड़ा भजन है। इस प्रकार साधना करनी चाहिए। आहा कैसा आनंद है, अरे भगवान की दया का स्रोत मेरी ओर बढ़ रहा है, ओहो मैं तो प्रेम के सागर में डूब रहा हूं। इस प्रेम के सागर में डूबने में कोई घबराहट नहीं है, आनंद है, चिन्मय है। ये भगवान की हमारे पर कितनी बड़ी दया है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रत्यक्ष बात है, भगवान की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। मेरे पर भी भगवान की कृपा है, इसलिए आप सब लोग कृपा करते हैं और आप लोग सुनते हैं। वास्तव में हरेक वक्ता को यही समझना चाहिए कि भगवान की मेरे पर देखो कैसी कृपा हो गई, भगवान अपनी बात मेरे मुख से कहलवा कर मेरे पर कितनी कृपा करते हैं। और भगवान श्रोता बन करके आते हैं। कोई भी वक्ता बन जाए, बात तो भगवान की बोलता है ना, शास्त्र की बोलता है ना, तो वक्ता को भगवान ने अपनी बात दी है वो सुनाता है। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। भगवान की चर्चा कहने सुनने का जो मौका मिलता है, इसके समान भगवान की कोई दूसरी कृपा हम जान नहीं सकते हैं। इसमें मूल में भगवान की कृपा होती है। यूं तो हर एक बात में ईश्वर की कृपा का दर्शन करके प्रसन्न होना चाहिए, परंतु हम सत्संग में आ गए, चाहे श्रोता बनकर आओ चाहे वक्ता बनकर के आओ, सब बराबर है। सत्संग में आ गए तो ये हमको भगवान की कृपा का बाहर का सर्टिफिकेट मिल गया, ये देखो हमारे पर कृपा है। क्यों? क्यों हमको सत्संग मिलता है। अब मन ही मन में भगवान के स्वरूप को देखो और उनके मुखड़े की तरफ देख देख करके आनंद मनाओ। भगवान मुझे देख रहे हैं, अब बस अब भगवान मुझसे बोलने वाले हैं, मेरे साथ हरदम भगवान रहते हैं, फिर चिंता भय और शोक किस काम का। फिर भी यदि आ जाए तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचयः, इस बात को याद कर लेना चाहिए। भगवान का मुखारविंद खिला हुआ है, उनके नेत्रों से दया बरस रही है, प्रेम भरी मुस्कान से अपनेपन से मुझे देख रहे हैं। प्रेम नेत्रों से भी देखा जाता है, प्रेम होठों से भी देखा जाता है। तो प्रेम भी नेत्रों से जाना जाता है, प्रेम की दया की समता की परीक्षा भी नेत्रों से होती है। नेत्रों से दर्शन के लिए गीता जी में समदर्शन समम पश्यति आदि शब्द कहे हैं। ये प्रेम क्या है कि प्रेम ही आनंद है। प्रत्यक्ष में जो आनंद है प्रसन्नता है, इसकी वर्षा प्रभु के नेत्रों से होती है। भगवान स्वयं चिन्मय वस्तु है, उनमें विशेष चेतनता नेत्रों में ज्यादा है। प्रभु ज्ञान का प्रभाव डाल रहे हैं, इससे हमारे रोम रोम में ज्ञान की दीप्ति हो रही है। सारे शरीर मन इंद्रियों में सबसे ज्ञान परिपूर्ण हो रहा है। रात दिन हमारे गुण प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान आकाश में खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देख देख कर खूब प्रसन्न रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए, भगवान जब मुझे नहीं छोड़ते हैं तो ये भगवान की कृपा कैसी मेरे पर बरस रही है। संसार में जो कुछ ऐश्वर्य है, विभूति है, विलक्षणता, ये भगवान की है। एक लौकिक कथा याद आ गई। महाराजा विक्रमादित्य जब स्वर्ग सिधार गए तो भोज थे वो राजा बने उज्जैनी में। तब की बात है, बहुत अच्छी बात सुन लो ध्यान से। एक ग्वाला था, वो बहुत अच्छा न्याय करता था। ग्वाला गाय चराने वाला, कोई न्याय कराने आता तो वो एक टीबड़ी पर ले जाता, टीबड़ी पर ले जा करके न्याय करता और उसका न्याय खूब प्रसिद्ध हो गया। लोगों की आपस में कोई खटपट होती तो ग्वाले के पास आते, दोनों ये पहले ही सोच लेते कि ये जो न्याय करेगा वो सही करेगा और दोनों ही मानेंगे। उसके पास जाते और वो जो कहता उसको सब मान लेते, चाहे अपने अनुकूल हो चाहे कोई प्रतिकूल हो। कभी कभी तो ऐसा मौका आता कि राजा भी जिस न्याय को नहीं कर सकता था उसे भी वो ग्वाला करता था, इतना बढ़िया वो शासन, वो न्याय करता था। एक बार की बात है, राजा के पास एक ऐसा मुकदमा आया कि राजा उसका न्याय नहीं कर सका। वो क्या था कि एक स्त्री को उसका पति ले जा रहा था। वो स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो आकाश में जो चंद्रमा का बेटा बुध है उसको वो स्त्री अच्छी लगी, तो उसने, उस बुध ने उसके पति का वैसा रूप बना लिया, रूप बना करके, और वो मार्ग में आकर खड़ा हो गया और उसका जो वास्तविक पति था उससे लड़ने झगड़ने लगा। मेरी स्त्री को उठा लाया, मेरी स्त्री को कहां ले जा रहा है? उसने कहा कि अरे भाई तुम तो अब आए हो, नहीं 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 तुम मेरी स्त्री को ले आया, क्यों वैसा का वैसा रूप। अब उस पति ने कहा कि भाई स्त्री से पूछो, हाँ पूछ लो। और वो स्त्री इधर देखे, उधर देखे, उधर देखे, इधर देखे, वो बिचारी स्त्री निर्णय नहीं कर सकी कि मेरा पति कौन। एक जैसे, एक जैसा स्वभाव, एक जैसा बोलना, एक जैसे वस्त्र सब, और कोई पीछे की बात पूछो दोनों ही बता दे, घर की बात भी दोनों बता दे, कितने बालक हैं, कितना घर में सामान है, अब वो बुद्ध भी बता दे, ये भी बता दे। अब दोनों लड़ने झगड़ने लगे तो राजा के पास ले गया मुकदमा। राजा उन दोनों को देखता है कि भाई अब क्या करें, इस मुकदमे का क्या करें। सब प्रकार से जो जो राजा परीक्षा ले सकता था सब प्रकार से परीक्षा ली। राजा ये मुकदमा जो है, इस मुकदमे का निर्णय नहीं कर सका, न्याय नहीं कर सका। राजा को बड़ी चिंता हुई कि देखो राजा भोज हूं और मुझे दुनिया कितना न्यायप्रिय मानती है, आज एक स्त्री को सच्चा न्याय नहीं देख सक रहा हूं, इसका असली पति कौन है? वो बुद्ध इतना प्रवीण था माया में कि उसने शरीर के चिन्ह वैसे के वैसे धारण कर लिए, कोई बता ही नहीं सके। राजा को किसी ने कहा कि महाराज आप इतने उदास क्यों होते हो, आपसे निर्णय नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, अपने राज्य में वो ग्वाला है वो निर्णय कर देगा, ग्वाला के पास ले चलो। तो राजा ने कह दिया अच्छा भाई तुम लोग जाओ और उस ग्वाले से निर्णय कराओ। तो राजा के सेवक लोग भी आए और वे दोनों भी आए और स्त्री भी आई, ग्वाला के पास आकर के कहने लगे न्याय करो, और राजा ने भी आपको न्याय करने का अधिकार दिया है। ग्वाला ने कहा चलो टीबड़ी पर चलो, यहां तो नहीं कर सकता, टीबड़ी पर ले गए। टीबड़ी पर ले जा करके उसके जाने क्या सूझ हुई, एक लोटा लाया, लोटा लाके उसमें रख दिया टीबड़ी पर, वही कहा कि देखो इस लोटे में जो प्रवेश कर जाएगा कौन करेगा, इस लोटे में प्रवेश कौन करेगा तुम दोनों में से? तब वो बुद्ध था वो उसमें प्रवेश कर गया। तब उसने कहा कि तुम इसके पति नहीं हो, तुम बनावटी हो, क्योंकि लोटे में ही प्रवेश कैसे कर गए, तुम आया भी है। उसको वहां से भगा दिया। ग्वाला ने कहा कि आपकी पत्नी नहीं है, और जिसकी पत्नी थी उसको बड़ा संतोष हुआ। राजा के पास ये खबर गई कि ग्वाले ने न्याय कर दिया। राजा भोज इतना बुद्धिमान, इतना इतना वो विद्वान, इतना शास्त्र ज्ञान रखने वाला, उसने पूछा कि भाई कैसे न्याय कर दिया है। ग्वाले ने कहा कि साहब ऐसे ऐसे मैंने लोटे में प्रवेश करने के लिए कहा, कि ये कोई न्याय होता है कि साहब अब इन दोनों में बनावटी पने को कौन जाने, मायावी को कैसे पता चला है। अब जो लोटे में प्रवेश हर आदमी थोड़ी कर सकता है माया के बिना। राजा ने कहा कि देखो तुम्हारी बात से मुझे संतोष तो खूब हुआ, परंतु ये बताओ कि तुम्हारे अंदर ये अकल आई कैसे, उपजी कैसे, कैसे उपजती है, एक नहीं कई सारे तुम ऐसे अच्छे निर्णय करते हो, ये उपज कैसे आई। ग्वाले ने कहा कि हे महाराज, मैं ये न्याय इस टिबड़ी में ही कर सकता हूं, और जगह नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा कि ये क्या बात है, तुम टिबड़ी के बाहर न्याय नहीं कर सकते, वहां मेरी अकल चलती नहीं है। राजा भोज ने देखा कोई न कोई विशेष बात है, सेवकों को बुलाया और टिबड़ी को खुदवाया, तो वहां एक बहुत बड़ा रत्न का सिंहासन मिला, वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। अब राजा समझ गए कि ये सिंहासन का प्रभाव है, इस सिंहासन के कृपा से न्याय की बात पैदा होती है। फिर राजा ने उस सिंहासन का पूजन करके अपने महल में रख दिया, और जब राजा न्याय करने पर पहुंचता तो सिंहासन पर बैठता था। उसके बाद राजा के न्याय बहुत अच्छे होने लगे। विक्रमादित्य ऐसे प्रभावशाली थे कि उनके सिंहासन में न्याय का प्रभाव उत्पन्न हो गया। ये बात स्थान की प्रधानता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो तीर्थ स्थान है वहां आप लोगों की जो भावना है वो स्वतः ही भावना जागृत होती है परमात्मा के प्रति। यदि आप भगवान के लिए किसी महात्मा की खोज करेंगे और आपको महात्मा नहीं मिले तो भगवान महात्मा का रूप धारण करके आ जाएंगे, शिक्षा दे देंगे, जैसे वो साधारण ग्वाले की तरह शिक्षा मिली। ऐसे आप लोग इस काम में लगे रहो, इससे आपके मन में अपने आप ही बातें पैदा होंगी। काक भुसुंड जी थे, उनके पूर्व जन्म कैसे कैसे थे सब जानते हैं, पर वो लगे रहे सत्संग में। तो वे जिस आश्रम में रहते वहां चार कोस तक कोई माया फटक नहीं सकती थी। जिस काम के लिए गरुड़ जी आए थे वो काम तो आश्रम के दर्शन से हो गया। फिर काक भुसुंड जी का उपदेश सुना तो गरुड़ जी को कितना लाभ हुआ होगा कौन कह सकता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मया हताम, ये सब मेरे द्वारा मरे हुए हैं और मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तो केवल निमित्त मात्र बन जा, युद्ध नहीं करेगा तो वो सब मारे जाएंगे, तब भी मारे जाएंगे। तू कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा निश्चय मिथ्या है, भगवान की शक्ति सब काम कर रही है, भगवान परम धाम पधार गए तब वही अर्जुन और वही गांडीव धनुष डाकुओं ने लूट लिया अर्जुन को। भगवान ने दिखा दिया कि देख अर्जुन, तेरे पास जो शक्ति वो मेरी है। जीवन में कभी अहंकार मत करना, जहां अहंकार किया वहीं भगवान थप्पड़ मारते हैं, ये उनकी विशेष कृपा है। हमें जो कुछ लाभ होता है वो भगवान की कृपा से होता है। ध्यान से सुनना, हम भगवान के सामने गदगद भाव से रोए, सच्चे हृदय से रोए, प्रार्थना करें तो अवश्य सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रभु के सामने की गई प्रार्थना कभी नष्ट नहीं होती है। बीज डालकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत मार्मिक बात है, देखो, जड़ पृथ्वी भी अपने पेट में बीज नहीं रखती, वो भी उगा देती है। कोई बीज डालते हैं तो बीज को पचाती नहीं, वो बीज को उगा देती है। बहुत बड़ा कीमती चावल गेहूं का धान हो और चाहे घास फूस का बीज हो, सबको प्रकट करती है, अपने अंदर बीज रखती नहीं है। फिर भगवान हमारी प्रार्थना को अपने अंदर ही रख लेंगे क्या? पृथ्वी जैसा भी भगवान के अंदर भाव नहीं है कुछ देने का? पृथ्वी जब बीज के बदले कितना देती है, तो भगवान के सामने आप गदगद भाव से रोएंगे, आपकी भगवान बात नहीं सुनेंगे, कैसे संभव है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। सेठ जी की उपस्थिति कैसी? महाराज जी कहते हैं उपस्थिति कैसी है इनके? वह भगवान की कृपा से हमारे हृदय में सद्भाव पैदा होता है। प्रभु पर निर्भर रहो, भगवान हमारे साथ जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। चाहे ऊपर से संसार की कैसी भी परिस्थिति आए, खराब परिस्थिति आए, पर अपने को तो उसमें भगवान की बहुत बड़ी दया समझनी चाहिए। प्रभु की दया का सागर यहां ओतप्रोत हो रहा है, हम लोग उनकी दया के पात्र हो गए हैं। मनुष्य शरीर मिला, सत्संग में आए, तीर्थ में आए, भगवत चर्चा मिली, इससे बढ़कर और क्या भगवान की दया होगी? सेठ जी बोलते थे, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाय, सियावर रामचंद्र जी की जय। यूं बोलते थे सीधी। अब बोला थे सबको कैसेट में ही आवे। ऐसे असंयोग पाकर के भी हम वैसे ही पड़े रहे तो क्या फायदा? हम निंदा के पात्र हो जाएंगे। सो कृत निंदक मंद मति, भगवान के नाम की तरफ लग जाओ, नाम के जाप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पवन सुत हनुमान जी ने भगवान के नाम का जप करके भगवान को अपने अधीन कर लिया। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। मैं मार्ग में जा रहा हूं और कोई मुझे पुकारता है तो मैं वहां झट खड़ा हो जाऊंगा कि नहीं? भाई मुझे कौन पुकारता है, खड़ा हो जाऊंगा। चाहे कितने ही जरूरी काम से जा रहा हूं पर मुझे पुकारा है तो खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे ही भगवान के कितने ही जरूरी काम हो, आप उनको पुकारो, पुकारते हुए नाम लो। पुकारते हुए नाम लो, हे राम नारायण विष्णु, जो आपको नाम अच्छा लगे पुकारो उनको, हे राम हे राम। सब काम छोड़ करके भगवान का ध्यान आपकी तरफ बटेगा। अजामिल है, गज है, गणिका है, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया बिना प्रयास के, केवल नाम जप किया। अपिचेत सुदुराचारे है, कैसा भी दुराचारी हो भगवान की भक्ति करने से वो श्रेष्ठ बन जाता है। नाम का प्रभाव है, नाम की महिमा है। भगवान ने अपने अंदर के गुण है वो नाम में रख दिए। भगवान में क्षमा है, शांति है, समता है, दया है, संतोष है, जाने कितने कितने गुण है, वो सब नाम के अंदर आ गए। जैसे जल है वो अपने आप ही नीचे के स्थान की तरफ जाता है, इसी प्रकार भगवान के नाम की अपने आप ही महिमा प्रकट होती है। रात दिन भजन करते रहो, आपके अंदर एक एक दिन में एक एक विलक्षणता आती रहेगी। भजन करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। जो भाई ऐसा मानता है कि भजन करने से सब पापों का नाश हो जाएगा, उसने नाम के महिमा के रहस्य को समझा ही नहीं है। क्यों? ये बात तो ठीक है, सर सर की आवाज का ही सारी इसी की है क्या? मैंने देखा कोई पंखों में नहीं। भजन करने से सब पापों का नाश हो जाएगा, जो भाई ऐसा मानता है वो नाम के रहस्य को समझा ही नहीं है। नाम की महिमा तो है कि सब पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस सिद्धांत को रखकर जो पाप करता है और सोचता है कि अभी तो पाप कर लो फिर नाम का उच्चारण कर लेंगे और पाप नष्ट हो जाएगा, तो ये तो वज्रलेप पाप है। ये तो भगवान के नाम को पाप की वृद्धि में लगाया है, नाम का दुरुपयोग किया है। नाम ऐसे पापी की कभी सहायता नहीं करता। आपको एक कथा सुनाते हैं। एक राजा ने एक व्यक्ति के कार्यों को देखकर बड़े खुशी खुशी से उसको अधिकार दिया कि हम तुमको एक अधिकार देते हैं कि हम किसी को फांसी पर चढ़ाएं और तुम आकर बोल दोगे कि नहीं साहब इसको फांसी मत दो, बचा लो, तो वो बच जाएगा। इतना बड़ा अधिकार देते हैं। ठीक, वो आदमी राजा की कृपा से राज्य में खूब अच्छा काम करता था। उस आदमी का दामाद था, बड़ा बदमाश था। उसने हिंसा, चोरी, व्यभिचार करना प्रारंभ किया। जगह जगह से उसकी शिकायतें आने लगी। उसके मन में यह था कि मेरा तो ससुर है, मरने देंगे ही नहीं। अब अठी बैठ जा, मैंने है जटी बैठ जा। तो ससुर है वो मेरे को बचा लेगा। तो वो किसी की नहीं सुनता। उस ससुर को पता चला, शिकायतें खूब आई, तो पिता ने बेटी को बुलाकर कहा कि देख तू अपने पति को समझा दे, अपना आचरण सुधार ले, उद्दंडता न करे, तो भयंकर दंड मिलेगा, फांसी हो जाएगी। पति ने उसको भी डांट दिया, कि तुझे क्या पता, हम तो करेंगे वैसा ही करेंगे। लड़की को डांट दिया। लड़की ने आकर कहा पिताजी से कि मैंने तो आपके कहे के उसको सावधान तो किया पर वो तो मानते ही नहीं। पिता ने कहा कि भाई अब तेरे भाग्य में यदि विधवा होने का योग है तो कौन बचा सकता है। उसका साहस ज्यादा बढ़ गया, दिन में भी डाका डालने लगा, लोगों ने उस पर कई केस कर दिए, केस प्रमाणित हो गए, न्यायाधीश ने उसको फांसी का आदेश दे दिया। अब जब फांसी का आदेश निकल चुका तो उसने अपनी स्त्री से कहलवाया कि जा तेरे पिताजी को बोल दे कि मेरे लिए फांसी का हुक्म निकला है, मुझे बचाओ नहीं तो तू विधवा हो जाएगी। वो रोती रोती पिताजी के पास गई और कहने लगी पिताजी क्या करूं। पिताजी ने कहा कि बेटी मैंने तो तेरे को पहले ही कह दिया था, मेरे कहने की बात का उसने आदर नहीं किया, तेरे समझाने की भी बात नहीं मानी, अब मैं क्या कर सकता हूं। कि पिताजी आपके हाथ में तो फांसी टालने की शक्ति राजा ने दी है। तो कहा कि बेटी मैं उस अपनी शक्ति को अनुचित काम में थोड़ी लगा सकता हूं, राजा ने जो मुझे अधिकार दिया है वो इस बुद्धि से दिया है कि मैं इस शक्ति का प्रयोग उचित ढंग से करूंगा। न्याय करने वाले में यदि भूल हो जाए तो मैं उसको बचा सकता हूं, परंतु तुम खुद देखो उसने कितना उद्दंडता का काम किया, ये तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी। तो भाई वो ऐसे भी मर जाता कभी तो भी विधवा होती, उसको कौन क्या करे, मैं उसको बचाऊंगा नहीं। आखिर उसको फांसी हो गई। शक्ति रहते हुए उसने अधिकार को अनुचित काम में नहीं लिया। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने नाम को अधिकार दिया है कि जहां मैं न पहुंच सकूं अथवा जो प्राणी मेरे तक नहीं पहुंच सके उनका उद्धार तुम कर दो। नाम को भगवान ने बहुत बड़ा अधिकार दिया और नाम उस अधिकार के द्वारा बहुत पापियों को बचाता भी है। पर किनको बचाता है? वह उन्हीं पापियों को बचाता है जो पाप से घबरा गए हैं, जो आगे पाप करना नहीं चाहते हैं, उन्हीं पापियों को वो बचाते हैं। लेकिन जो यदि नाम की महिमा को देखकर नए नए पाप करता है और पाप लगता है और सोचता है कि मैं नाम का उच्चारण कर लूंगा पाप नष्ट हो जाएंगे, तो उसका ये नाम पाप नष्ट करता नहीं है, न्याय नहीं है। वास्तव में नाम की महिमा कम नहीं है, परंतु नाम की महिमा छीनी भी नहीं जाती, परंतु नाम इसके लिए बचाता नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के विधान के विपरीत बात होती है, ये छिपा हुआ रहस्य है। यदि वो व्यक्ति अपने दामाद को बचा लेता तो फांसी से एक बार बचा तो लेता, पर राजा उसका अधिकार छीन लेता कि मैंने आपको जो अधिकार दिया आपने पक्षपात किया। नाम का अधिकार भगवान छीनते तो नहीं है, परंतु नाम ऐसा काम नाम के द्वारा ऐसा होता नहीं है कि पाप की तो वृद्धि हो और नाम उसमें सहायक बने। नाम में तो अनंत गुण भरे पड़े हैं। राजा बलि भगवान का भक्त था, सदाचारी था, धर्मात्मा था, उससे भगवान राज्य क्यों छीन रहे हैं? बात यह कि बलि धर्मात्मा तो था और राक्षस धर्मात्मा नहीं थे। भगवान ने देखा कि तीनों लोकों का राज्य देवताओं के हाथ में रहना चाहिए, राक्षसों के हाथ में नहीं। तब भगवान वामन रूप धारण करके बलि के पास गए। बलि ने सत्कार किया, पूजा की, कहा कि महाराज आपने हमारे घर को पवित्र कर दिया, मांगो। तीन पग पृथ्वी मांगी। शुक्राचार्य ने कहा कि भगवान तुमको धोखा देने के लिए आए। बलि ने कहा कि मैंने तो देने का कह दिया, अब मैं अपनी बात को वापस नहीं ले सकता। जिनके दर्शनों के लिए शिव वगैरह सब तरसा करते हैं, वे मेरे घर आ गए, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या सौभाग्य होगा। तो भगवान ने एक पैर से, दो पैर से सारी त्रिलोकी की नाप ली, तीसरा पैर बलि के ऊपर रखा, बलि के ऊपर रखा। ऊपर में तो बात है कि तीन पग पृथ्वी की, भीतर में ये बात है कि सारी त्रिलोकी का राज्य ले लेना। यदि कहो कि कपट है तो हम लोगों को कपट दिखता है, भगवान के लिए कपट नहीं है। ये तो एक रहस्य है, क्या कि भगवान के द्वारा बलि का कल्याण करना। भगवान ने मस्तक पर, बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा। इस रहस्य को न इंद्र समझता है और न और कोई समझता है। इंद्र तो राजी हो रहा है कि चलो ये राज्य अब हमको मिलने वाला है। भगवान राजी हो रहे हैं कि देखो बलि को परम पद मिल रहा है। महात्मा के हृदय में अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार होता नहीं है। और बुद्धि में पाप, बुद्धि पाप में लिप्त होती नहीं है। देखने में आता है कि पाप करता है किंतु पाप है नहीं। हत्वा भी सह मान लो का न हंती न निबध्यते। ये हमारे सामने गंगा जी बह रही है, इसमें कोई गाय भी बह गई, कोई और भी मुर्दे बह गए, सबको बहाकर ले जाती है, पर क्या गंगा जी को गाय के मारने का पाप लगता है? और कितने लोग गंगा जी का आचमन करते हैं तो क्या गंगा जी को कल्याण करने का पुण्य मिलता है? गंगा जी अपने प्रवाह में बह रही है, चाहे कोई डूबो चाहे कोई तरो। इसी प्रकार महात्मा लोग होते हैं, उनमें कोई अहंकार तो होता नहीं, अब चाहे कोई कैसे ही रहे। महात्मा में स्वार्थ नहीं रहता तो कर्म उनको बांधते नहीं है। वामन भगवान ने जो ये कर्म किया, ये दिखने में कपट है परंतु कपट नहीं, रहस्य है। कपट वो होता है जिसमें अपना कोई स्वार्थ हो, और जो सबके हित के लिए किया जाता है वो कपट नहीं है, यही रहस्य है। जैसे माँ बच्चे के हित के लिए दूध में दवा डाल कर देती है, क्या इसको हम कपट मानेंगे? वो बच्चा है, दवाई लेगा नहीं, दूध में दवाई दे दी। ऐसे ही भगवान ने बलि के राज्य छीनने में उसका हित कर दिया। एक माँ का स्नेह भी इतना होता है, भगवान का स्नेह कितना होता होगा? देवता और ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए, विचार किया कि सब में बड़ी क्षमा किसमें है। भृगु जी ने कहा कि मैं परीक्षा करता हूं। ब्रह्मा जी की सभा में गए, ब्रह्मा जी पिताजी थे, भृगु जी ने प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी ने उलाना दिया। फिर कैलाश पर्वत पर गए, अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास, अपने छोटे भाई भृगु को आता देखकर बड़े प्रेम से आलिंगन करने के लिए रुद्र भगवान आगे बढ़े। भृगु ने कहा तुम उन्मार्गगामी हो, मैं तुमसे नहीं मिलता, तुम्हारा स्पर्श नहीं करता। भगवान शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़े, पार्वती जी ने बचा लिया। भग करके सीधे विष्णु लोक में गए, भगवान सोए हुए थे। जाते ही भृगु जी ने लात मारी, देखो एक ब्राह्मण आया है और ये तुम सो रहे हो, तुमको तो ब्राह्मण को उठ करके अभिनंदन अभिवादन करना चाहिए, इतना अपराध करते हो। लात मारी। लात लगते ही भगवान रोने लग गए, भृगु जी के चरणों में गिर गए। महाराज मेरा हृदय तो कठोर है, आपके चरण कोमल है, आपके बहुत चोट आई होगी, आपके चोट से मेरे हृदय में दुख हो रहा है। भृगु जी गदगद हो गए, रोने लग गए। और भृगु जी आकर के सब लोगों को बताने लगे कि भगवान की कभी परीक्षा मत करना, भगवान परीक्षा के योग्य नहीं है। कितनी क्षमा है, बिना अपराध के मारे तो सहने के लिए तैयार। संसार में जितने आपको सद्गुण दिखते हैं, ये भगवान के किसी एक अंश में है। प्रभाव की तो बात ही अलग है। भगवान का प्रभाव क्या बताए, पारस का मूल्य नहीं जानते। भगवान का मूल्य क्यों बताए, कैसे बताए? एक पारस का पत्थर संसार भर के लोहे को सोना बना सकता है, उसकी महिमा का अंत नहीं। भगवान का प्रभाव, भगवान की सुंदरता को देखकर तो रति और कामदेव भी लज्जित होकर सिर झुकाते हैं। और पशु पक्षी जो हरदम मोहित ही रहते हैं, वे भगवान को देखकर और ज्यादा मोहित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मोह पशु पक्षियों में है, तमोगुण देखे और मोहित हो जाते हैं। भगवान का रहस्य तो भगवान जब जनामे तभी पता चलता, हर किसी को पता नहीं चलता। भगवान बाल कृष्ण की लीला को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये काय का भगवान है, भगवान है तो परीक्षा करें। परीक्षा करने आए, ब्रह्मा जी फेल हो गए। सती जी ने परीक्षा की, फेल हो गए। गरुड़ जी ने परीक्षा की, फेल हो गए। अपनी बुद्धि से भगवान को आप कैसे जान सकते हो? भगवान का शरीर, भगवान का धाम, ये चिन्मय होते हैं, निर्विकार होते हैं। भगवान का धाम गुणों का धाम है। भगवत प्राप्त पुरुष ही उस बात को जान सकते हैं। भगवान का धाम, संतों का धाम, ये सब बड़े विलक्षण होते हैं। इन सब में भगवान से ही विलक्षणता आती है। महाराज जी कहता नहीं, सिंथ लाड़ी सीमा में आते रामसर से सत्संग करा के आए तो कोई बीच में एक टीबा था, वो टीबे से यूं जीप आकर के, जीप ही चलती थी, यूं जीप आई तो कहा कि सिंथल की सीमा कहां से प्रारंभ होती है? तो हरकाराम जी है, हरकाराम जी ने कहा बस इस टीबड़ी से, ये टीबड़ी है, टीबा है, धोरा यहीं से, यहीं बड़ी शांति मिली है। सिंथल की सीव के अंदर इतनी शांति। तो ये सब भगवान की कृपा का प्रभाव है। भगवान का ध्यान करें तो समझना चाहिए, भगवान आकाश में खड़े होकर हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब आलस्य और विक्षेप कैसे आएंगे? कहते हैं मन चंचल है। अरे भगवान आ रहे हैं, भगवान के सामने मन भी क्या करेगा? काकभूषण जी के आश्रम में माया का कोई भी विकार चलता नहीं था। निरंतर ध्यान कैसे हो? वैराग्य से और उत्कट अभिलाषा से होता है। सुधन्वा ने अर्जुन का घोड़ा पकड़ लिया और ये समझा कि अब अर्जुन को हरा दूंगा, क्योंकि सुधन्वा भी भगवान कृष्ण का भक्त था, अर्जुन भी भक्त था। वह भगवान को बुलाएगा, भगवान आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और फिर यदि मरूंगा तो कोई बात नहीं। वह भगवान को बुलाएगा, भगवान आएंगे और मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। विलंब से आने के कारण उसे तेल के कड़ाहे में डाला गया, पर भगवान के ध्यान के प्रताप से तेल भी उसे चंदन सा लगने लगा। याद अब आएगी प्रहलाद जी के यहां। सुधन्वा को कड़ाई से निकाला और युद्ध आरंभ हुआ। सुधन्वा ने अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन से कहा, ए अर्जुन, तुमको कोई हराने वाला नहीं मिला, मैं सुधनवा मिला हूं, जाओ किसी को अपने मित्र को बुलाना हो तो ले आओ, क्योंकि ऐसी चुनौती दिए बिना अर्जुन लाता नहीं तो भगवान के दर्शन होते नहीं। अर्जुन ने भगवान को बुलाया, प्रार्थना की, भगवान आ गए। भगवान के आते ही सुधनवा ने सब अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और अर्जुन के जाकर गले लिपट गया कि भगवान के दर्शन के लिए तुझे बुलाया था। भगवान का ध्यान छूटा नहीं, इसलिए तेल में भी जला नहीं। इसलिए भगवान की इन बातों पर विश्वास करो और भगवान के स्वरूप का ध्यान करो।